दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे।
हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे।
त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी,
तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी,
युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी,
युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी,
अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे,
चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे।
शांति। आज सेकंड पार्ट है। तो एक किसान होता है जिसके खेत में एक चिड़िया घोंसला बना लेती है, और घोंसला बनाने के बाद दो अंडे देती है। चिड़िया दो अंडे देती है, कुछ दिन बाद उसे दो चूजे बच्चे पैदा होते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो जब बच्चे निकलते हैं तो चिड़िया जो है उनके खाने का इंतजाम करने के लिए सुबह निकल जाती है, और शाम को लौटती है तो देखती है कि दोनों बच्चे रो रहे होते हैं। जब चिड़िया उनसे पूछती है कि क्यों रो रहे, तो बच्चे बताते हैं कि किसान आया था खेत में और बोल रहा था कि अभी फसल का टाइम पूरा हो गया, फसल काटनी है, तो इसलिए अब हम कहाँ जाएंगे। तो चिड़िया बोला है, कोई फिक्र नहीं करो, किसान कल नहीं आएगा, अभी फसल नहीं कटेगी। तो अगले दिन वैसा ही होता है, फसल नहीं कटती है। फिर चिड़िया अगले दिन जाती है, फिर शाम को लौटती है तो फिर बच्चे रोते हुए मिलते हैं। बोले, किसान फिर आया था आज और बोल रहा था कि कल मैंने मजदूरों को बोल दिया है कल फसल कट जाएगी। चिड़िया फिर बोलती है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, कल फिर फसल नहीं कटेगी, अभी अभी आराम से रहो। तो क्या होता है, फिर अगले दिन फिर चिड़िया जाती है, शाम को फिर लौटती है, और बच्चे जो हैं फिर रोते हैं। तो बच्चे रोते हैं तो फिर चिड़िया पूछती है कि आज क्या पर बात है। तो बोले, आज फिर किसान आया था, ले आज बोला कि अभी लेबर नहीं काट रही, तो कल से मैं खुद फसल काटूंगा। तब चिड़िया क्या करती है, अपना घोंसला समेटती है, बच्चों को लेती है और दूसरी जगह चली जाती है। तब दूसरी जगह चली जाती है तो चिड़िया से बच्चे जो हैं वो प्रश्न करते हैं कि दो बार जब वो किसान आया तब आपने दूसरी आपको कैसे पता चला कि वो फसल नहीं काटेगा, तीसरी बार जब आया जब उसने बोला तो तब आपको कैसे पता चल गया कि कल फसल कट जाएगी। तो प्रश्न है कि कैसे उसको पता चला चिड़िया को। जब तक व्यक्ति निर्भर रहता है, डिपेंडेंसी रहती है, तब तक वो किसी भी कार्य में सफल नहीं होता है। कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। तो जो बमन था वो उसने पुण्य तो किया लेकिन दूसरे का धन का, इसलिए उसको क्या प्राप्ति हुई थी, नौकरी मिली थी उसी के नीचे। अगर कहानी याद है तो दोहराएंगे नहीं, टाइम कम है। तो उसको क्या हुआ था, उसने काम तो अच्छा किया कि उसका धन सदुपयोग पुण्य के कार्य में लगाया, बमन था जो, लेकिन वो फिर क्या हुआ, उसको नौकरी मिली उसी के पास, तो जिससे वो दुनिया में कहते हैं कि नौकरी से व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। और जो जिसने जिसकी भावना श्रेष्ठ थी, सब भावना थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, तो वो क्या क्या हुआ उसके, उसमें उसको अनलिमिटेड मिला। तो उसको अनलिमिटेड मिला। तो आज हम देखेंगे निर्भरता। निर्भरता के अंदर पांच प्रकार की जो सेकेंड क्वालिटी की आत्माएं हैं, वो क्यों सेकेंड रह गई, उनमें पांच प्रकार की निर्भरता, फाइव पी। तो पहले जो है, बाहर की तो बात नहीं, ब्राह्मण जीवन की बात कर रहे हैं हम, कि क्यों आखिर क्या ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके कारण हमें निर्भर रहना पड़ता है, किन चीजों के कारण। तो फाइव पी देखेंगे। तो पहली इसमें है प्राप्ति। प्राप्ति पर हम निर्भर रहते हैं, जब तक प्राप्ति नहीं होगी पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और ऐसा दुनिया में होता है कि आपको दुकानदार कोई सामान दे दे, पैसे बाद में ले, होता है ऐसा, पहचान नहीं है तो पहचान तो एकदम से नहीं होती ना, पहले दुकान दो तीन बार जाना पड़ेगा तब पहचान होती है। भगवान की पहचान कैसे हुई, जब हम 7 दिन का कोर्स किए, जब समझे, जब जाने, तब पहचाना ना। तो बाबा को पड़ोसी बनाया था क्या पहले, बाबा को तो ये भी नहीं जानते थे कि कौन है, वो तो धोखे से चलते चलते फंस गए। तो पहला है प्राप्ति के अनुसार। इस ब्राह्मण जीवन में अगर कुछ प्राप्ति हो जाती है तो भगवान से कैसी लगन लग जाती है, मतलब वो भी आधार है। प्राप्ति नहीं होती तो छोड़ के चले जाते हैं, मतलब उधर हमारा क्या है, स्वार्थ है, कहीं ना कहीं निस्वार्थ में नहीं आएगा। पहला है प्राप्ति के अनुसार ही हम बाबा को, अगर कुछ अच्छा कर दिया उसने तो अच्छे से चलेंगे, कुछ बुरा कर दिया तो नहीं चलेंगे। बाबा नहीं करता बुरा, वो तो हमारी इच्छाएं हैं ना, इच्छा हम जैसी रखेंगे वैसे ही होता है। एक एग्जाम जहां पे हम रहते थे, तो उधर पे देखा सेंटर में कि बहन जी रहते थे, तो उनको बहन जी ने कभी कुछ चीज मांगी नहीं कभी भी, लेकिन जो भाई था उधर, तो ज्ञान में डिप्रेशन में था, लेकिन बाद में ज्ञान में आ गया, अच्छा जॉब में था, साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, तो आ गया, तो बहन जी को देखा कि नॉर्मल रहते, तो खुद अपनी इच्छा से देना शुरू कर दिया यज्ञ में बहन जी को, मतलब सेंटर के लिए करना शुरू कर दिया। और मतलब ये कहना था कि बहन जी ज्ञान अच्छा सुनाती है। तो बाद में क्या हुआ कि बहन जी का तबादला हो गया, ट्रांसफर, बहन जी का दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। तो जब दूसरी बहन आई तो वो क्या बोलता है कि सारी चीजें मेरी दी हुई हैं, तो इनका उपयोग अच्छे से करना, मतलब दिया भी तो किस लिए दिया, किसी को देख के दिया, ये नहीं सोचा कि हमने कहां दिया, भगवान को दिया। तो कभी कभी हम व्यक्तियों के उसमें भी आकर्षण में फंस जाते हैं, उनसे शायद हमें किसी ब्राह्मण आत्मा से भी कोई चीज प्राप्ति होती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि इससे मिला है हमको, और उसी से अटैचमेंट हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर भगवान नहीं होता तो क्या वो दूसरी आत्मा ब्राह्मण बनती, नहीं बनती ना। तो अगर कुछ कोई चीज हमें किसी से मिला है तो वो किस आधार पे मिला है, तो पहली यही है डिपेंडेंसी कि हम प्राप्तियों में फंस जाते हैं, दूसरी है पुरुषार्थ में डिपेंडेंसी, दूसरा सुनाए, दूसरा भट्टी कराए, दूसरा जे कराए तो हम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, दूसरा कमेंट्री करा के आते हैं ना, निष्ठा में बैठाए बाबा के आता है, दूसरा कराएगा तब करेंगे। ये तो गधे की मिसाल हो गया, क्योंकि गधे को जब चाबुक पड़ता है तभी वो चलता है। गांव में कहते हैं गरियार बैला, उसको जब तक मारोगे नहीं जब तक वो चलेगा नहीं। जो गांव के होंगे उन जानते होंगे कि जब तक उसको पड़ेगा नहीं ना डंडा तब तक वो चलेगा नहीं। कोदू का बैल एक बीच में खम्मा गाड़ते हैं वो किनार चलता है, उसको मारते ही रहना पड़ता है, और जैसे ही उसको मारना छोड़ा तो वो रुक जाएगा। तो ऐसे इधर पे पुरुषार्थ में किसी की क्लास से इतना अटैचमेंट हो गया कि पुरुषार्थ ही क्लास नहीं आ रही तो पुरुषार्थ ही खत्म। किसी भी चीज में डिपेंडेंसी चाहे पुरुषार्थ में है अच्छी चीज, लेकिन एक हद तक, क्योंकि आशीष भाई हाथ टूट गया किसी का तो प्लास्टर क्या लाइफ टाइम बांध के रखते हो, कब तक? जब तक जुड़े नहीं हड्डी तब तक। ऐसे ही है, जब तक बाबा से तार नहीं जुड़ रही तो लो आधार, हर आत्मा का जो आपसे पुरुषार्थ में आगे हैं उनका आधार लो, जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन ही आधार बन जाए, वो जीवन ही का हमारे आधार बन जाए वो व्यक्ति, ऐसा नहीं। और यहां पर क्या है, फंसना बहुत आसानी से फंस जाते हैं, पता नहीं चलता। जब बहुत गहरा फंस जाते हैं, जब वो आत्मा थोड़ा दूर हो जाती तब समझ में आता है कि ये तो फंसा हुआ था। तो दूसरा पुरुषार्थ में बातें तो बहुत सारी हैं, पुरुषार्थ में भी फंसना नहीं है। पुरुषार्थ भी करना है तो ऐसा हो कि लाइट, रेड लाइट ना भी रहे, लाइट रहे चाहे ना रहे, पंखा चले चाहे ना चले, गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो एक साथ। क्योंकि इस लॉकडाउन में भी देखो जो निरंतर कार्यशील लोग रहते हैं वो कुछ कर जाते हैं, उनको कोई भी चीज हिलाती नहीं है। आज वायरस है, लोग कितना परेशान है, लेकिन जो करने वाले हैं वो लगे हैं। अभी इसी लॉकडाउन के सीजन में 5G लॉन्च कर दिया, वो निरंतर लगे अपने कार्य में। कहानी सुनाई थी ना वो एल्वा एडिसन, उसको होश ही नहीं था कि खाने पीने का, और उनको कोई भी प्राप्ति पे आधार नहीं होते, जो इनका जुनून रहता है जज्बा रहता है वो लगे रहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मुलाकात जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी से हुई, जब उनको भारत रत्न दिया गया 1998 में शायद, तो क्या हुआ, उनने उनको ऑफर किया कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। इससे एक हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है भारत में वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत रत्न थे और वो भी बहुत अच्छे वो माने गए थे। तो जब उनने प्रस्ताव रखा उनके सामने तो उनने कहा कि मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि एक दिन का टाइम चाहिए मुझे, तो बोले ठीक है टाइम ले लो। और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जवाब दिया कि नहीं, अभी मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी है। और उसके कुछ दिनों बाद उनने क्या किया, परमाणु परीक्षण, जिसमें वो सफल हो गए, क्योंकि उनका कहीं और फोकस था, इसलिए वो उनको उससे ऊंची पदवी मिल रही थी लेकिन उनने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और चीज था कि मैं भारत की सुरक्षा बल को कुछ देना चाहता हूं, वो पहले कार्य निपटा लूं फिर मैं सोचूंगा इसके बारे में। तो जो परमाणु परीक्षण उनने कर लिया, फिर कुछ दिन बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी का फोन गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास, बोले आपसे मिलना है तो आप जल्दी आ जाइए। तो जब वो आए, फोन में बात हुई, तो उनने कहा कि फिर से उनको ऑफर दिया कि अब आपको प्रेसिडेंट तो नहीं, सिर्फ नामांकन करना है हमारी पार्टी के साथ। तो उनने क्या किया कि बोले मुझे एक घंटे का समय चाहिए।
बोले अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि ठीक है एक घंटे का वाले समय लो, लेकिन अब उत्तर मेरे को हाँ में चाहिए।
तब उनने हाँ किया, जब हाँ कर दिया उनने, तो जब वो राष्ट्रपति भवन में थे, जब उनने शपथ ली, नामांकन किया, तो तब मजाक में सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे कहा कि देखो तुम भी कुंवारे हम भी कुंवारे, सबके साथ हंसी मजाक करते हुए बोले तुम भी कुंवारे हम भी कुंवारे दोनों। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ी रमणीयता के साथ एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले मैं कुंवारा के साथ साथ ब्रह्मचारी भी हूं। स्वयं भगवान ने जिस व्यक्ति के ऊपर बोला हो, एक 2006 की मुरली स्वयं उन्हीं के ऊपर चली है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, साइंस और साइलेंस। भगवान त्रिकालदर्शी है, वो हर आत्मा को जानते, उन्हीं के ऊपर चली है। शायद वो याद भी होगा आप लोगों को कि उस समय दो कुमार भाग के बाबा की स्टेज में पहुंच गए थे, बाबा के पास, तो बाबा को पकड़ने की कोशिश भी की थी उन्होंने, स्टेज में दौड़ के गए थे। उस समय बाबा ने एक और चीज कही थी जो किसी मुरली में बहुत चर्चा नहीं की, कि बाबा अगली बार तभी आएगा जब तुम लोग प्रॉमिस करोगे कि जो होमवर्क देता हूं वो करके लौटोगे। सबको खड़ा कराया था बाबा ने, उस वो पहली मुरली है सारी अव्यक्तवाणी में जहां बाबा ने इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल शक्तिशाली शब्दों में बोला था बच्चों को। तो ये थी दूसरी बात पुरुषार्थ की। तीसरी जो है, पहली बात थी प्राप्ति, दूसरी पुरुषार्थ में डिपेंडेंसी, तीसरी है पद, पद के आधार पर। कोई हम यज्ञ में सेवा तब करेंगे जब हमें कोई पद मिलेगा, कोई पद नहीं है तो नहीं करेंगे, छोटी सेवा है तो नहीं करेंगे, बड़ी सेवा मिलेगी तो करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, सेंटर में ऐसे ही कोई छोटे सेंटर में जहां कभी हम गए थे सेवा एवा के लिए, सेवाओं के लिए गए थे ऐसे ही, तो उधर पे क्या हुआ कि बहन जी ने एक तिरची के कोई प्रोग्राम करना था उनको, तो प्रोग्राम करना था तो थोड़ा सहयोग चाहिए था, तो उनने एक युक्ति रची कि जो अच्छा सहयोग करेगा, जो अच्छा सहयोग करेगा प्रोग्राम में उसको थोड़ी अच्छी सेवा मिलेगी, थोड़ा स्टेटस वाली पद पोजीशन दिखेगा जो कैमरे के सामने, और जो जितने जिस हिसाब से जो सेवा करेगा उस हिसाब से उसको सेवा दी जाएगी। तो क्या हुआ कि एक थोड़ा नामी गिरामी व्यक्ति था, तो उसने सबके सामने दे दिया बहन जी को कुछ पैसे, 1000-1500 रुपए, जो सबसे ज्यादा उसी ने दिए, बाकी किसी ने 100-200 अपनी लिमिट के हिसाब से। लेकिन एक माता थी जो बहुत गरीब थी उधर, लेकिन थी बहुत आनंद, तो उसने क्या किया कि हाथ में नहीं दिया पैसा, उसने सारा जो उस वो कुछ नहीं करती थी, मजदूरी करती थी, उसने जो साल भर मजदूरी की थी ना पूरा पैसा निकाला अपने अकाउंट से और धीरे से बाबा की भंडारी में डाल दिया। और बाबा के बच्चे कभी गुप्त नहीं रहते, कितना भी कर लें वो प्रयास, ये सबका अनुभव होगा, 100% ट्रुथ है कि वो छुप नहीं सकते, चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, वो छुप नहीं सकते, कितने भी अपने को कोशिश कर ले छुपाने की। बाबा कहता है ना, सूरज कितना भी कोशिश कर ले, बादल कुछ समय तक ढक सकते हैं उसको, हमेशा नहीं। कभी ये सुना है कि रात ने सवेरा नहीं होने दिया? तो उस माता ने डाला शायद उस 10,000 रुपए डाले भंडारे, जो बहुत बड़ी रकम होती है। ये हमको इसलिए पता है क्योंकि पासबुक हमने चेक करी थी। तो जब उसने डाला तो उसने दिया नहीं, तो बहन जी को पता कि इसने कुछ नहीं किया, इसको सेवा दे देंगे सफाई की, बर्तन जो VIP खाना खाएंगे तो उनका सफाई करेगी बर्तन की। और जो करता है ना यज्ञ में गुप्त रीति से, उसका नशा अलग होता है, उसको कोई पोस्ट पोजिशन की जरूरत नहीं है, उसके जो बोल होंगे शक्तिशाली होंगे,
उसका जो कर्म होगा वो नशे में होगा। तो जो सारे लोगों को नाश्ता दिया गया जिनने सहयोग किया, सिर्फ उस माता को छोड़ के, उस माता ने खिलाया सबको, सबकी थालियां धुली, सब कुछ किया नशे में, उसको कोई फर्क नहीं। और मतलब जो ज्यादा सहयोग जिनने किया तो उसका रुतबा बढ़ गया कि भाई उसने ज्यादा सहयोग किया, प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया। जिसने उमंग उत्साह से किया था उसका खूब नाम हो गया, जो देखता था वो व्यक्ति सामने नाम हो गया, कुछ दिन तक ज्ञान में चला, उसके बाद छोड़ के चला गया। वो माता आज तक है, और उस माता से करीबन 20 साल कहो कि ये तो 20 साल तो नहीं, 10-15 साल के बाद जब देखा उस माता को, तो वो जो उसकी कंडीशन थी वो नहीं रह गई। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि आज वो उसने सेंटर को जमीन दी, सेंटर में यज्ञ में पैसा लगाया, इतना सारा उसके साथ कैसे होगा, क्योंकि वो एक झोपड़पट्टी में रहती थी, दूसरे को घर में जूठन बर्तन ये भी सफाई की, उसके बच्चे थे उनको पढ़ा लिखा लिया, अच्छी अच्छी शिक्षा दे दी। उसके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि उनकी हाईवे के किनारे कुछ प्रॉपर्टी थी जो उसके नाम पे थी, उसको पता नहीं था, ये 10 साल के बाद पता चला। उस समय बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, बड़े बड़े लोगों की, अब लोगों को तो रजिस्ट्री करानी थी, तो उसको पैसे भी मिले, प्रॉपर्टी भी मिली, कुछ खाली जगह जो थी तो उधर का उसको मिला, और जहां पर लोग बना चुके थे तो उसका रजिस्ट्री कराने का पैसा मिला, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिली। तो ये क्यों, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान कहता है जो मेरे बच्चे गुप्त रीति से करते हैं, जिन्हें कोई लालच नहीं है पद पदीसन प्रतिष्ठा का, उनको पद भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, शान भी होगी, सारी चीजें इसी जो योग में मिलेंगी। उधर की प्राप्ति तो है ही है, लेकिन इधर भी होगी। तो ये ऐसी ऐसी बहुत आत्माएं हैं, तो कुछ तो प्रत्यक्ष हो जाती हैं, कुछ लास्ट में होंगी या कुछ नहीं भी होंगी। लेकिन बाबा ने इधर पे एक चीज और बोली है, जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं एक चीज और होता है हमारे साथ, कि बाबा के घर में हमारा एक अकाउंट खुलता है, एक क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, अकाउंट भी खुलता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है। उसमें कुछ आत्माएं अकाउंट में जमा करती रहती हैं और कुछ क्रेडिट से लेती रहती हैं, है ना। क्रेडिट से लेना मतलब और अकाउंट में जमा बस करना मतलब करते रहना, लेना कम। ऐसी कई आत्मा है जो देती ज्यादा है लेकिन अपेक्षा कम रखती हैं, लेती कम है, और इतना जितना उनको जरूरत है उतना ही लेंगे। पता चला कई को 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, अभी तक यज्ञ से कपड़े भी नहीं लेते। कुछ मतलब जो उनको यज्ञ से प्रेम से मिल जाता है वो स्वीकार कर लेते हैं, इच्छा नहीं रखते कि ये मिलना चाहिए, ऐसा रूम चाहिए, खटिया चाहिए। अरे जहां पर भी है, वो पट पे भी है तो पटरानी है, बाबा ने कहा पट पे है वही मस्त है। और वास्तव में हमने देखा कि जब हम शुरू में आए थे तो हमको खटिया कुछ भी खाली नहीं मिला, तो अपना थोड़ा शुरू में जब आए थे तो थोड़ा अपना नशा रहता है कि यार उधर तो अपने पास खटिया था, इधर पे तो खटिया भी नसीब नहीं, खाली नहीं है खटिया, तो पट मिला ठीक है, बाबा घर में मिला, ज्ञान से समझा लिया अपने को, चलो हाँ ठीक है। लेकिन चलते चलते बहुत दिन हो गए, तो क्या हुआ कि पहले जब हम घर में थे तो हमारा सुबह उठने में भी प्रॉब्लम था और कमर दर्द करती थी बहुत तेज, बहुत प्रॉब्लम होती थी, उठने के बाद कम से कम 15-20 मिनट बैठना पड़ता था, इतना शरीर हमको दर्द करता था। लेकिन जब हम इधर पे पट में सोए तो वो दर्द गायब हो गया। बहुत बहुत ज्यादा दर्द था वो मतलब, और दर्द भी होता था, सिर भी भारी होता था, और दिन भर मूर्छा एक्टिव नहीं रहते थे। तो जब पट में सोए तो बहुत सारे बेनिफिट हो गए। तो देखा कि फिर पढ़ा कि नीचे जमीन में सोने के फायदे क्या हैं, तो उसमें बहुत सारे फायदे मिले। आपको अर्थिंग मिलता है, अर्थिंग मिलता है शरीर को, अर्थिंग पावर। तो अगर उसमें अर्थिंग पावर इसलिए मिलता है कि जब हम जमीन से जुड़े रहते हैं, क्योंकि प्रकृति है, इससे बहुत सारी ऑटोमेटिक, तो हमको नींद आलस्य का जो था वो एक्टिव थोड़ा फील करने लगे। अगर अमृत वेले हमें आलस अलबेलापन आता है तो जमीन में सोना चाहिए, क्योंकि सन्यासी जमीन में सोते हैं। आता है तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का त्याग करना है, तो कुछ है मतलब। और वास्तव में त्याग में जो सुख है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। प्राप्ति में तो है ही नहीं, प्राप्ति में दमन है, त्याग में सुख है। और रामायण में दिखाया गया है कि राम से बड़ा भी किसी ने त्याग किया है। किसने किया? और बोलो, बहुत सारे पात्र हैं। भरत ने किया, इसलिए इस भारत भूमि का नाम राजा भरत के नाम पे है। भारत का नाम कैसे पड़ा? भरत उसके नाम से पड़ा। तो क्या हुआ, जब रामचंद्र जी नहीं आ रहे थे, कहानी पे नहीं जाते हैं लेकिन इतना बस है कि रामचंद्र जी अगर पट पे सोएंगे, जब बन गया वो, तो रामचंद्र जी अगर पट पे सोएंगे तो मैं उससे भी नीचे गड्ढा करके सोऊंगा। तो भरत, और महल में नहीं रहूंगा, चरण पादुका आपकी ही रहेंगी, सिर्फ मैं निमित्त हूं। तो निरहंकारिता का गुण उधर से सीखने मिलता है। कितना निरहंकारी कि वो अगर भगवान पट पे सो रहे तो मैं पट से भी नीचे सोऊंगा, और वो राज्य नहीं कर रहे तो मैं राज्य की सीमा रेखा पे लास्ट में बॉर्डर में रहूंगा, कुटिया बना के। आप कुटिया बना के रहोगे, वैसा ही कंदमूल मैं भी खाऊंगा। तो त्याग उसको कहा जाता है जब प्राप्ति हो। त्याग वो नहीं है कि जब करना पड़े। तो राम से बड़ा त्याग उसका माना गया भरत, जहां पे विश्व उनके गुरु और जहां पे राजा जनक भी हार गए मना मना के। एक धर्म पे अड़ा है, एक प्रेम पे अड़ा है। भरत को प्रेम था, उसने परित्याग कर दिया था अपनी मां का। सबसे बड़ा त्यागी वो था जिसके पास सारी चीजें होते हुए। और वास्तव में ना, जब अपने साथ ना दुर्घटना होती है तो अपन को लगता है कि ये क्यों हुआ। वास्तव में व्यक्ति निखरता है जब परिस्थिति आती है, तो निखरता है। अगले दिन राम को क्या है, राज्य मिलने वाला था, और अगले दिन ही उसको क्या मिल गया, वनवास। लेकिन राम के मस्तक में कोई था, स्वीकार कर लिया। जब हम कोई सेवा हमको अचानक मिलती है ना, हम स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके साथ बाबा बल भी देता है। उसके साथ बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। सेवा का बल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। और कहते हैं कि जिम्मेवारी उसी व्यक्ति को दी जाती है जो जिम्मेवार होता है, और साथ साथ जिम्मेवारी के साथ उसको वो भी दिया जाता है, शक्ति। तो ये तीसरी बात थी। बातें तो बहुत सारी हैं। तीसरी, पहली क्या थी, दूसरा, तीसरा, पद के आधार पे डिपेंड नहीं। तो पद के लिए उन 90-70 की किसी अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला है, दो प्रकार के प्रारब्ध भोगते हैं ब्राह्मण। एक तो यहीं भोगेंगे और एक वहां भोगेंगे। और क्रेडिट कार्ड और उसकी बात जो करे थे, तो क्रेडिट मतलब जो खाते रहते हैं, लेकिन एक दिन बिल फटेगा। क्रेडिट कार्ड का क्या रहता है, महीने भर आप लेते रहो, एक डेट पे हर महीने की एक तारीख को आपको बिल पेड करना पड़ेगा, और बिल पेड नहीं किया तो विथ पेनाल्टी करना पड़ेगा, पेनाल्टी बढ़ती जाएगी। ऐसे इधर है, इधर प्राप्ति हो रही, अगर हमें कोई सुख सुविधा मिल रही तो इसका ये मतलब नहीं कि लूट लो। टोली मिल रही तो एक की जगह दो ले लो, गुलाब जामुन बट रहे तो एक की जगह दो ले लो, सारा आपकी अकाउंट से ही क्रेडिट हो रहा है, आपका ही अपना माइनस कर रहे हो। ये नहीं सोचो कि यज्ञ का कुछ हो रहा है, उसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। भाई साहब, आपने जो पुण्य का खाता जमा किया है उसी आपको मिल रहा है, और वो भी खा के हजम कर दिए तो कल क्या होगा? बिल फटेगा, मतलब बिल ऐसा फटेगा कि चुकाने में कष्ट होगा, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा। तो ये बाबा ने कहा जो अव्यक्त मुरली में कि दो प्रकार से भी पद मिलते हैं आत्माओं को, एक तो आपका सम्मान ना पोजीशन के हिसाब से भी होगा, और दूसरा एक पुरुषार्थ के अनुसार भी होगा। दो प्रकार से आत्माओं का सम्मान होगा, ब्राह्मण आत्माओं का, अगर कोई हाई पोजीशन में है इस ब्राह्मण परिवार में तो उसका रिगार्ड भी रखते हैं लोग, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते उसका, क्योंकि निमित्त है वो। और एक पुरुषार्थी आत्मा है, वो कोई पोजीशन में नहीं है, लेकिन उसका भी लोग रिगार्ड रखते हैं। क्यों? तो ये था पद। तीसरा है पुअर थिंकिंग, चौथा पुअर थिंकिंग, बिल्कुल गरीब सोच है। दूसरी क्वालिटी ना आत्मा, मैं तो कुछ आता नहीं है मेरे को। अरे आता नहीं तो सीखना, तू रोने से क्या सोगा? क्या कोई सिखाता नहीं है? अरे आजकल तो सारी चीजें जी हो गई ना। वास्तव में ना अगर जज्बा हो सीखने का तो वो व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहते हैं कि अगर एक होशियार जो स्टूडेंट रहता है ना, वो कमजोर टीचर से भी सीख लेता है, अगर सीखने का जज्बा है तो। और नई जिसको ना नई सीखना है तो उसको कितना भी सिखा दो आप, नहीं करना तो नहीं करना। चौथा है गरीब सोच। कौन कौन सी हो सकती है अब आप लोग बताओ, किस प्रकार की ब्राह्मण आत्मा में सोच होती है कि मेरे से नहीं होगा, पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, कोई सेवा दी गई और पहले ही ना कर दिया। तो कैसे बाप समान की एक स्टेज से तो फेल हो गए। बाप समान की पांच मुख्य स्टेज बाबा ने बताई है व्यक्तवाणी में, पांच फॉलो फादर यानी पांच कंडीशन बिल्कुल मस्ट। पहला कौन सी? हाँ, फॉलो फादर मीन्स पांच बिल्कुल अव्यक्त बाप दादा ने एक ही मुरली में शायद बोली है, अलग अलग बोली है, लेकिन पांच उनने बोली है। कोई भी नहीं है इसमें, आप बताओ, सबको बताना है, क्योंकि जिसको फॉलो करना उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हैं सारी वही कदम आप वही बता रहे, लेकिन एग्जैक्ट जो बाबा ने बोली, जिनने अव्यक्त वाणी है सारी पढ़ी, वो हाथ उठाए थोड़ा। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं पूछ रहे, कोई वो नहीं है, थोड़ा हमको भी जानकारी होनी चाहिए, तब तो उनको पकड़े हम। लेकिन पढ़ी सारे लोगों ने है, कई कई बार पढ़ी है, वो तो सबको पता है, लेकिन वास्तव में ना हम क्या करते हैं, जो भाई जी ने बताई थी बात कि आग तो जल रही है लेकिन उसमें ना खट्टा घी डालते हैं, ये मुरली पढ़ ली वो, हमको याद ज्यादा करना है, क्योंकि काम वही चीज आती है। एग्जाम सेंटर में आप 50 बुक पढ़ के चले जाओ और 50 प्रश्न आने हैं उसमें, 50 बुक आपने पढ़ ली लेकिन पांच के भी उत्तर सही से नहीं लिख पाओ, तो क्या मतलब ऐसा पढ़ाई का? पढ़ो पांच ही आप, लेकिन पूरे परफेक्ट पढ़ना चाहिए कि थोड़ा याद तो रहे। लेकिन एक बात है कि एकदम से भी याद नहीं होता, कभी कभी हम पूरी मुरली पूरी बुक पढ़ के खत्म कर देते हैं और एक भी शब्द याद नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं होती। हमारे जीवन का अनुभव है कि 2.5 साल में एक बुक खत्म करी थी, बम्मा बाबा के जीवन कहानी, 2.5 साल लग गया था। और एक शब्द पढ़ने के बाद एक भी शब्द याद नहीं, एक भी शब्द याद नहीं। लेकिन खुशी बहुत थी क्योंकि पहली बार जीवन में कभी बुक खत्म की थी, इतने तो पढ़ाई में भी नहीं करी थी। बुक ही बस खत्म करने का एक नशा था अपना कि बुक तो खत्म की हमने। तो 5 बातें पहले बता देते हैं, वो बहुत जरूरी हैं अपने जीवन में चेक करनी है कि वो डेली लिख के रखनी है, वो तो इधर लिख के रखनी है क्योंकि दीवार में लिखे हुए बहुत सारी चीजें लिखी रह जाती। और कल बाबा ने कहा था ना अपना भोजन बनाना है, वो बहुत गहरी बात है। जैसे ही अपना आप विचार करोगे ना, अपनी छोटी सी चीज भी ना अच्छी लगती है, अपनी छोटी सी भी चीज अच्छी लगती है। तो 5 बातें, पहला सर्वस्व त्यागी, 1 सेकेंड में जिसकी त्याग की भावना हो सर्वस्व त्यागी हो। दूसरा सदा आज्ञाकारी, बिल्कुल संकल्प में वफादार। तीसरा, पहला सर्वस्व त्यागी, दूसरा, तीसरा संकल्प में भी वफादार, चौथा विश्व कल्याणकारी, 5वां एक से सर्व संबंध, उसके अलावा किसी से नहीं। वास्तव में अगर हमारे लौकिक माता पिता भी हैं तो उनकी जिम्मेवारी तब तक थी हमारे साथ जब तक हम इस ज्ञान में नहीं थे। जैसे ही ज्ञान को समझ लिया, भगवान को समझ लिया, उसके बाद उसकी जिम्मेवारी उसकी होती है जिम्मेवारी। और ये बहुत अब हमें लगता है कि नहीं, लौकिक और इसका अलग अलग भेदभाव करते हैं, तो ये होता है, ये चौथा है। 5वां है प्योरिटी। प्योरिटी में अगर अप डाउन है, जिस बमन है, तो प्योरिटी में अप डाउन। प्योरिटी मतलब हमेशा प्योरिटी शब्द को ना तोड़ा गया, मरोड़ा गया, क्लियर कट कभी नहीं बोला गया। यज्ञ में भी हमने कभी जगदीश भाई के अलावा किसी के मुख से नहीं सुना उस विषय के बारे में स्पष्ट, जो स्पष्ट उनने किया है ब्रह्मचर्य बुक में। कितनी सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है। और क्या है कि जब भी काम महाशत्रु मुरली में आता है तो जो सुनाने वाला है ना उसको शत्रु लगता है, वो कब उस शब्द से बाहर निकले, इतना जल्दी फास्ट रगड़ा खाते हैं उसमें। क्योंकि बीमारी पूरे विश्व की वही है पूरी, और पढ़ाई पूरी वही है। सबसे बड़ा वायरस तो वही घुसा हुआ है लोगों में, और अभी बहुत विकराल रूप ले लिया उसने। टेलीकॉम में थे जब हम, करीबन हम बहुत सारी चीजें, और आज अगर देखो लोगों को, एक शो देखा था हमने शाबाश इंडिया, शायद देखा होगा आप लोगों ने भी, तो उसमें एक वीरेंद्र शर्मा करके 80,000 प्लस शब्द डिक्शनरी के प्लस पेज नंबर शायद याद कर लिया। और जब उसका इंटरव्यू उससे पूछा गया कि ये कैसे किया तुमने, अगर स्मृति में हमारी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है तो और कोई चीज की कमी नहीं है, पवित्रता कहीं वीक है। पहले लीकेज बंद कर, फिर नाव चला। नाव में अगर होल है, कितना भी तुम नाव को चला लो, डूबनी तो है ही है। पवित्रता की कमजोरी है वो तो डूबना निश्चित है। तो क्या उसने बताया अपना कि स्वामी विवेकानंद को कैसे याद हो जाती थी, ब्रह्मचर्य का बल। और बाबा ने तो इधर पवित्रता उससे ऊंची स्टेज है, और हमको मुरली का एक स्लोगन याद नहीं रह पाता, धिक्कार है। ये हमारे लिए, क्योंकि हमको ना बड़ा कष्ट होता था, लोग हमसे पूछ लेते थे ना मुरली का शब्द। हाँ, मुरली का शब्द जब हम एक बार दादी जी का झूला, जो शांतिवन में झूले में झूल रहे थे, बहुत छोटे थे, 5वीं छठवीं क्लास में थे तब, 2003 की बात है। दादी जी के सामने जो झूला, दादी जी कॉटेज के सामने रखा है, उतनी गाड़ियां नहीं होती थी पहले, उधर झूला रखा था ऊपर, अभी भी रखा है, दो झूले थे, एक पैरों से चलता था एक सिंगल था, पीपल का पेड़ है बरगद का उसके नीचे रखा था, तो उधर झूल रहे थे। एक भाई आ गया अचानक, उसने पूछा, दो चित्र दिखा, एक ब्रह्म बाबा को एक शिव बाबा को, बोले इसमें शिव बाबा कौन है, ब्रह्म बाबा कौन है? अब तो अंदर कौन है, क्यों कभी भी कोई प्रश्न करता था तो हम कब जाते थे, थोड़ा डर जाते थे। तो बताया तो शायद धोखे से बताया, उसमें जानते भी नहीं थे कौन ब्रह्म कौन शिव है, ये नहीं जानते, धोखे से बताया सही निकला, हाँ ये सही है। तो फिर क्या हुआ, उसने पूछा धीरे से, आज की मुरली सुनी क्या? अब उस समय तो मुरली समझते नहीं थे, सुबह से निकल जाते थे रात को लौटते थे, तो दिन भर घूमते रहते थे। उस समय मोर और पाले हुए थे उधर पे, इतना वो नहीं था, विस्तार नहीं था ज्यादा, सारे पट ही पट थे, कमल कुंजो चाहे कहीं चीकू तोड़ना, और सबसे पहले तो चोरी भी कर लेते थे, चीकू चोरा लिया रात में, वो तो बहुत कुछ कर लेते थे। तो उसने स्लोगन पूछा, प्यार से पूछा, प्यार से। तो अंदर से लगा यार कुछ पता नहीं है, मुल्ली उल्ली तो कभी सुनते नहीं थे, क्योंकि जब बाबा आए थे तो तब हम सो गए थे, जब तक बाबा नहीं आए तो जाग रहे थे। रेड लाइट में हमारे साथ एक ये होता था कि नींद आती थी बहुत गहरी, रेड लाइट में बैठा और बहुत गहरी नींद लगी, तो सो गए थे, बाबा आए थे जब सो गए थे, और जब बाबा गए जब जागे, और अभी भी जब बाबा गए तब जागे। तो क्या हुआ कि कहा थे, हाँ स्लोगन पूछा भाई ने, तो फिर स्लोगन क्या, स्लोगन में उसने नहीं बता पाए, मुझे नहीं पता, तो फिर उसने बताया स्लोगन, और फिर पूछा, फिर भी नहीं बता पाए, तीसरी बार फिर बताया उसने, फिर पूछा, नहीं बता पाए, और धीरे से उधर से किनारा कर लिया, भाग गए। तब से लेकिन आग लग गई कि कभी तो जिंदगी में स्लोगन याद करूंगा और दूसरों से पंगा लूंगा जरूर। तो वो तो अलग एक स्टोरी है, बहुत बड़ी, वो अलग बात है। तो चौथा क्या था अपना, पुअर थिंकिंग, गरीब सोच नहीं रखनी कि मैं ऐसा हूं। जब तक हम इस छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक भगवान देखो समान चढ़ाता है सबको, हम ही तो पतित बेकारी, सारी खटक्रम हमारे ही अंदर थे, दुनिया में क्या नहीं, सारी चीजें अपने अंदर बुराई थी ना, जब उसने ऊंचा दृष्टि से देखा तब तो हम बदले ना, एकदम से थोड़ी बदल गए, जब उसने देखा हमको ऊंची दृष्टि से तब हमने हमारे अंदर बदला हुआ। तो छोटी सोच नहीं रखनी, क्योंकि हमारा समर्थमान बाबा है। पांचवा है प्योरिटी, प्योरिटी में वो तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इसमें दो, ब्रह्मचर्य और पवित्रता, पवित्रता अलग सब्जेक्ट है, ब्रह्मचर्य अलग सब्जेक्ट है, दोनों के लिए बाबा ने अलग अलग बोला, तो इसके बारे में तो बात अलग है। तो ये दूसरा पार्ट हुआ, इसके लिए पांच चीजों पे, जो निर्भरता तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रकार की निर्भरता रहती है, लेकिन इन पे ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति।